रस आस्वादन न हो,
वो रस
यहाँ पर
ये विपरीत होकर के अशुभ बन जाता है, हानिकारक होता है इस जगत में। यद्यपि ये कहा गया नर तनु भजन निर्मूल, ये मनुष्य शरीर भजन का मूल है, इस बात में सार्थकता है यदि उपयोग किया जाए अच्छी तरह से, शुद्ध रूप से साधन भक्ति का अनुशीलन करें, तत्व को ग्रहण करें, तत्व तो ठीक है। और नहीं, अभी देख रहे हैं हम धर्म का ध्वजा उठाए हुए लोगों में परस्पर वाद विवाद बिछड़ना, एकमति नहीं हो रही, ये सब का कारण क्या है? यही कारण है। प्रपंच में मनुष्य जाति जितनी भी सृष्टियां हुई हैं उन सब में सर्वोत्तम है, यह बात ठीक है। क्यों? इसको साधु संघ होता है, विचार शक्ति भी है, दूसरे के अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण भी कर सकता है, किंतु दूसरों के कुविचारों को भी तो ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, किंतु बुरा या अच्छा अपने स्वतंत्रता के ऊपर में निर्भर। यदि स्वतंत्र का सदुपयोग किया तब तो मनुष्य जन्म सार्थक है, और नहीं तो देखते हैं नर पिशाच जैसे, नर पशु जैसे व्यवहार करता है। आजकल अधिकांश ऐसा है, सदुपयोग हम नहीं करते, विचार भी नहीं करते, इसलिए आश्रय वैकुंठ के परिकर जो है वो हमारे मूल आश्रय नहीं है, वो आश्रय उनका दिया गया, भागवत का आश्रय दिया गया, शुद्ध ग्रंथों का आश्रय दिया गया, शुद्ध जिनमें प्रेम है उनका आश्रय लिया जाए तब तो ये उपयोगी होगा मनुष्य शरीर। आज इसके विपरीत यदि हम इसका दुर्व्यवहार करते हैं, ये संसारिक चीजें आएंगी और जीवन को बर्बाद कर देंगे। भगवान के मनुष्य रूप के अतिरिक्त भी मनुष्य को छोड़ करके मत्स्य, कुर्मा, बराह, हंस, नृसिंह, हय शीर्ष, हय ग्रीव, हय ग्रीव माने घोड़े, बराह इत्यादि बहुत से रूप हैं। ये क्यों है? जीवों के स्वरूप वृत्ति के उन्मेष के लिए प्रभु ने ऐसे रूपों को धारण किया। अत्यंत बुद्धि रहित, विचार रहित, मनुष्यत्व रहित, मत्स्य, कुर्म इत्यादि हैं, उन लोगों के लिए वो अवतार लेकर और तब उनको उन्नत करेंगे। वनमानुष लोगों के लिए परशुराम जी, शुद्ध मर्यादा युक्त पुरुषों के लिए रामचंद्र जी का जीवन, प्रेमी व्यक्तियों के लिए कृष्ण का जीवन, बलदेव जी का, ऐसे ये जीवों के स्तर बढ़ाने के लिए ये सब चीजें। इसलिए नहीं कि पहले मछली से आरंभ करके ये सृष्टि आरंभ हुई, मछली से फिर कुर्म, कुर्म से फिर सुअर, सुअर से फिर बंदर, और बंदर से मनुष्य हुआ, इसलिए नहीं, प्रारंभ में ये सब चीज, किंतु प्रभु जी ने समस्त के रूप में योनियों में उन्होंने जन्म ग्रहण किया, उन लोगों के उद्धार करने के लिए। इस लीला में लीला वैचित्र की उपयोगिता के विचार से मनुष्य देह में जो कृष्ण ने स्वयं अवतीर्ण होकर के जो लीलाएं की हैं वो मनुष्य के अनुरूप है, किंतु लोग समझ नहीं पाते हैं अनुरूप। यहां तक कि मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति भी, विधि विधान में रहने वाले व्यक्ति भी इसको समझ नहीं पाते। जैसे कृष्ण का चीर हरण
झूठ बोलना
और सब जो चीजें हैं ये उन लोगों के समझ में नहीं आती। इसलिए कृष्णचंद्र जी इस जगत में लीला प्रपंच में
कृष्ण स्वयं प्रचंद्र नंदन अवतीर्ण होकर
सर्वोत्तम मानवों के लिए जो सभ्य वस्तु हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ये उत्साह देने के लिए लोभ देने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण। भजन की पराकाष्ठा, भजने वस्तु की सेवानुभूति को सुनकर स्वरूप के उन्मेष होने में बहुत सहायता, माने भगवान की ये जो लीलाएं होती हैं इन लीलाओं को देख करके समझ करके भक्तों का तत्व सुन करके उनको उपदेश को सुनने पर हमारा स्वरूप क्या है इसको उन्मेष करने में अर्थात इनको समझने में बहुत कुछ सहायता मिलती है। इसीलिए भगवान की लीलाएं होती
जीवों के स्वरूप का उन्मेष क्रमशः होता है।
उन्मेष माने क्या? एकदम हम शरीर को जड़ को मैं मानता हूं, फिर मन की तरफ में चले, फिर आत्मा की तरफ में जाए,
क्रमशः हम आत्मा हैं,
फिर कृष्णदास हैं, कौन से कृष्णदास हैं
ये क्रम से उपलब्धि होगा। कृष्ण ने जगत में प्रकट होकर के जिन जिन लीलाओं का प्रकाश किया है, जिनको रुचि है भागवत की कथाओं में वो तो उसको ग्रहण कर लेंगे, अरुचि नहीं है वो ग्रहण है, विद्या के बल पर पांडित्य के बल पर मेधा उत्तर के बल पर उनको नहीं समझा जाए। यदि आदमी शरणागत हो जाए और भागवत की सेवा करे, भागवतों की सेवा करे, भागवत माने वैष्णवों की दोनों, जहां शरणागत है मैं कुछ नहीं जानता है प्रभु आप कृपा कीजिए, वो तो अंतर्यामी है शक्ति संपन्न है, वो झट इस चीज का बोध करा, और अपने मन से हम समझ नहीं जाएंगे ये कभी नहीं होगा। इसलिए रुचि लाभ करने की सुविधा के लिए, रुचि को उत्पन्न कराने के लिए भगवान ने मत्स्य कुर्मा बड़ा ही इत्यादि लीलाओं के बदले फिर रामलीला का अवतरण कराया, प्रकाश कराया, रामलीला के रूप में अवतरण, और फिर राम आदि जो नर्वत लीलाएं हुई उसमें मर्यादा के कट्टर फॉलो करने वाले थे, इसमें रस की कोई चमत्कारिता न होने से कुछ नर लीला में बाकी रह गया, इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण के रूप में आए। प्राकृतिक बुद्धि विशिष्ट प्रभुपाद की लेखनी में एक चीज है, अनर्थों को दूर कराने की तरफ में इनकी विशेष चेष्टा रहती है। अनर्थ युक्त अवस्था में ही रस समझने की चेष्टा करें, इसके लिए वो हाथ में खड़ग लेकर के रखते हैं, इसलिए इस बात का खंडन किया है। प्राकृतिक बुद्धि विशिष्ट, प्राकृतिक बुद्धि विशिष्ट, जड़ बुद्धि विशिष्ट सहजिया, अप्राकृतिक सहज धर्म को नहीं समझ पाते। ये लिख रहे हैं भवित है ना, भवित क्रिया सुत्वा तत्परो भवित, तत्परो भवित, और एक और है तत्परतेन निर्मलम, इस पर यह बतला रहे हैं ये तत्पर कौन होगा, रुचि जिसको है वो तत्पर होगा और नहीं तो जड़ बुद्धि लेकर के और भगवान की लीला कथाओं को समझने जाएंगे तो वही मोह और आसक्ति ये इत्यादि चीजें हमारे हृदय में आएंगी, वो सब चीजें नहीं समझ सकते, कृष्ण को अपने समान समझने लग जाएंगे। कृष्ण को भी हमारे जैसे मनुष्य थे और हमारी जैसे ही उनकी चेष्टाएं थी। यदि राधा कृष्ण की निभृत लीलाओं को स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान में चित्त लग जाता है यहां तक तो ठीक है, और यदि भगवान की गोपियों के साथ लीला को सुन करके जड़ीय भाव उत्पन्न होकर के काम की तरंगें उठती हैं तो क्या समझो, बंद करो मत छुओ, और नहीं तो उसी की उद्दीपना होगी, है अप्राकृत। किंतु इस जगत में जड़ धर्म जड़ काल और ये सब जड़ मोह इत्यादि रहने के कारण हम उस पर आरोप कर लेते हैं, इसलिए यदि कई पढ़ने के साथ साथ में उसकी गंध भी आ जाए थोड़ी सी भी तो समझो कि अभी अनर्थ हमारे अंदर में अधिक है, अभी रुचि नहीं है। और यदि उन लीलाओं के स्मरण करने से चित्त पवित्र हो जाता है और उसमें निविष्ट हो जाता है, समझो हम ठीक साधन से चल रहे हैं, यह रुचि का लक्षण है। और नहीं तो सहजियाओं का जैसा होता है व्यभिचार उसमें अनिवार्य हो जाता है, व्यभिचार का इसके द्वारा विशुद्ध सत्व में गोलोक की विचित्रता नहीं समझी जाती। गोलोक में संपूर्ण रूप से शुद्ध लीलाएं हैं, गोलोक वृंदावन इस जगत में हमारी अभी वासना बुझने की शक्ति ये सब जड़ी है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए। इसलिए अपक्व अवस्था में समझने से यह व्यभिचार जरूर आएगा, काम क्रोध लोभ मद मोह जरूर आएगा, जितना भी इसको कोई चेक करने की चेष्टा करे वो जरूर आना ही, इसलिए इसको दूर करके साधक भजन करना चाहिए। मलिन चित्त में इंद्रियों की जो सेवा करने वाले हैं वो अधिपतित हो जाते हैं, अधापतन उनका हो जाता है। शंकर की जब ब्रह्मा की जब ये अवस्था है दिखलाया तो साधारण जीवों की क्या बात, इसलिए ऐसी रुचि होना भी सहज नहीं, लोभ होना सहज नहीं, लोभ होगा तो क्या होगा, कहां पहुंचेगा, निष्ठा के बाद ऊपर चला गया। लोभ होना माने एक तरह से रुचि से ऊपर आसक्ति हो गई, इसलिए रागानुगा भक्ति आसक्ति से आरंभ होती है, अनर्थ काफी दूर हो जाता है। एक आदमी मान लिया कि जैसे यहां पर बहुत दिनों से है, 40 वर्षों से है, फिर इसे विरक्त होकर के घर क्यों चला जाता है या संसार में प्रविष्ट होकर के मरता क्यों है, क्यों छोड़ नहीं सका उन काल के विषय को, आसक्ति को मोह को छोड़ नहीं, कम से कम उन्नत होना चाहिए तो उन्नत नहीं हो पाता, ये सब बाधाएं इसमें है, इसलिए बाधाओं को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए साथ साथ में, और इधर में विचार कर करके शुद्ध रूप से हरिनाम शुद्ध रूप से हरि कथा सुनना और शुद्ध रूप से सेवा करना इस तरह से करना चाहिए। इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में पहले दूसरे तीसरे श्लोकों की अवतारणा की, बातो वेद का मनुषा क्रोध वेगम जिहवा उदरोपे, इसके लिए हम साधकों के लिए इसे दूर रहना चाहिए। बाकी सहजिक लोग जो हैं सहजिया इसको समझ नहीं पाते, वो स्त्री को पुरुष है तो स्त्री बना लेंगे, स्त्री का कपड़ा पहनेंगे, स्त्री का श्रृंगार कर लेंगे और कहेंगे कि मैं सखी हूं, ये प्राकृतिक है सहजिया की। अभी हम जिस अवस्था में अभी भाई उसी अवस्था में रह करके साधन भजन करो, जब अप्राकृत भाव हृदय में उदित होगा तब इस विषय में कुछ आगे लोग सचमुच में हो। इसलिए भगवान की भक्ति कोई सांसारिक वस्तु नहीं है, विशेष करके यह लोभ होना सहज नहीं है। परमपंच में उतरने वाली जो कृष्ण की लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, विशेष करके मैया के साथ में झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने कहां मत्ती खाई, मैंने चक चोरी की, सवेरे से तो हमको मधुबन में भेज दिया और वहां से शाम होकर के गायों को लेकर के आया, भूखा प्यासा में सो गया, मैंने कब मक्खन चोरी। विशेष करके पाश्चात्य देशों में आधुनिक पढ़े लिखे लोग, जड़ बुद्धि संपन्न लोग इसकी मीमांसा ही नहीं कर पाते, यहीं पर भी नहीं कर पाते। इसलिए योग माया के द्वारा प्रकटित विशुद्ध सत्य में जो कृष्ण की रास आदि जो लीलाएं हैं, इस लीला को देखने वाले समझने वाले जगत में बिरले लोग हैं, बहुत बिरले लोग। सज्जन संप्रदाय कृष्ण को तो लीला को नश्वर भोग के अंतर्गत समझते हैं, अपना भोग। हम लोग इस चीज को इस रूप में ना ग्रहण करें, मान लिया कि एक आदमी 10-20 वर्षों से 25 वर्षों से 40 वर्ष से भजन कर रहा है, अब क्या कारण है कि उसको छोड़ करके फिर विवाह इत्यादि में प्रवेश करे, फिर संसार में प्रवेश करे, नौकरी में फिर लग जाए, इसका मतलब क्या? भक्ति को उसने कभी भी धारण नहीं किया, समझा नहीं, भक्ति को एक साधारण लौकिक वृत्ति समझा। भागवत में काव्य है ना, और सब जगह आज जिह्वा के चलने से ही हरिनाम हो जाता है, स्पंदन मात्रे न कीर्तनम भव, बस हो गया, न छोड़ने की जरूरत है, न कोई आफत है, न कोई यह है, बस एक बार नाम कर दिया बस हो गया। एक कृष्ण नाम करने वाला कनिष्ठ अधिकारी, निरंतर कृष्ण नाम करने वाला, हम कहते हैं निरंतर भगवान नाम करने वाला भी कनिष्ठ से भी दयादिता हो सकता है, हो सकता है। नहीं तो ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग भी ऊपर से चित होकर के नीचे चले जाते हैं। इसलिए हरिनाम करते 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 ये सब चीजें दूर हो जाए तब समझो जहां और लोग उत्पन्न हो जाएगा, तो वो विपत्ति मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। ये प्रभुपाद जी का विचार है, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्पर होने से निर्मल होगा, उसमें काम क्रोध लोभ मद मोह मद सब ये संसारिक वासनाएं रहेंगी, ये तो कभी संभव पर नहीं है। साबुन लगाने से मैल रह जाएगा, और जराता तो समझे जी घटिया किस्म का ये साबुन है, ये मैल दूर नहीं करता। आजकल तरह तरह से ये सब कंपनियां ऐसा करती हैं, रद्दी चीज को भी अच्छा चीज बना करती है, ऐसे ही इस जगत में भी। इसलिए तप निर्मलम जरूर होगा, सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रोखे अहेतुक्यव्यवहिता आत्मा संप्रसिद्ध, आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न क्यों नहीं होती? हरि हरि का भजन करते करते नाम करते करते चित्त और विषाक्त होगा कि निर्मल होगा? काम क्रोध और बढ़ेगा ना और कम होगा? यही तो विचार है, भगवान का नाम कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, चित्त और निर्मल होता जाएगा। ये सब विचार करना चाहिए अपने भजन में, जब यही नहीं विचार करते हैं और सुन रहे हैं चैतन्य चैतामृत का चतुर्थ अध्याय रस निर्जास स्वादन करने के लिए जगत में आते हैं, तो रस के बदले में हो जाएगा भोग का रस आस्वादन कर रहे हैं निर्जास। ये सब चीजें दूर होनी चाहिए, भजन का तो ये अनुसंगिक या गौण फल भी तो है ना, चित्त निर्मल होता जाएगा और तब भगवान के प्रति तत्परत्वर होने से और निर्मल होकर के तब इस चीज को समझेंगे कृष्ण लीलाओं को।
इसलिए तत्परत्वेन निर्मलम और तत्परो भवेत पद का कुछ लोग कदर्थ करते हैं, अन्य अर्थ कर लेते हैं विकृत अर्थ करके। और प्राकृत तत्व में प्राकृत का की अवर्चना फेंकते हैं, माने क्या है अपराकृत चीज किंतु प्राकृत विचार का आरोप करते हैं। भजन करने से अपराकृत वस्तु का चित्त निर्मल नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा या और खराब हो जाएगा, संसार में प्रवेश करने की प्रवृत्ति आएगी, न कि सुखदेव गोस्वामी के साथ समान, नारद जी के साथ समान अथवा व्यास जी के समान, उसका चित्त और भगवान की तरफ में लगेगा और दयालु होता जाएगा कि और निष्ठुर होगा, सब उसमें गुण भगवान के जो हैं वो सब तो संचरित होंगे जीव के हृदय में, न कि और विरोधी होता जाएगा। इसलिए हम लोगों को विचार करके चलना चाहिए, सुधार करने की बहुत अभी गुंजाइश है। इसलिए अप्राकृत तत्व में प्राकृत की का गंदा कीचड़ मत फेंको, तादृशी कीड़ा, तादृशी कीड़ा है ना, कैसी तादृशी कीड़ा, शब्द का अर्थ भ्रम में इंद्रिय तर्कन में निजुक्त है। भजते तादृशी कीड़ा, भजते मैंने स्मरण करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में और उनका मन निर्मल हो जाएगा, ये करना चाहिए, साधक क्रमशः करेगा किंतु हृदय में निर्मलता आएगी। इसलिए तादृशी कहना अपराकृत, जो कृष्ण की जो अपराकृत लीलाएं हैं उनका तत्पर होने से हमारा चित्त भी तो अपराकृत होता जाएगा, इस पर लक्ष्य रखना चाहिए, दूषित न होने पर। किंतु प्रकृत प्रस्ताव में अपराकृत जो रति है वही तादृश शब्द का तात्पर्य, भजते तादृशी कीड़ा, भजते तादृशी अप्राकृत रति, जो कृष्ण के नित्य परिकरों में रागात्मिक जनों में जो प्रीति है वैसा प्रीति करने की चेष्टा करो जैसे रघुनाथ दास को स्मरण, अस्पराशम स्त्री को भी प्रत्याग करो, इंद्र के समान ऐश्वर्य को भी धूलि के समान समझ करके सदा के लिए प्रत्याग, पांडव लोग सब प्रकार के वैभव में रहते हुए भी सब समय कृष्ण की ही चिंता करते हैं, युद्ध इत्यादि आरंभ करते हैं, जीवा में अपना सर्वोच्च दांव पर जानबूझ करके हार जाते हैं, जीत गए हैं कभी दुर्योधन ने कहा जब आप लोग हार गए मैं जीत गया तो ठीक है आप जीत गए, ऐसा क्यों, कृष्ण आएंगे नहीं तो आएंगे ही नहीं, इसलिए ऐसा क्यों। द्रौपदी को भला कोई मनुष्य हार सकता है, जो मनुष्य हार गया खुद ही वो दूसरों को भी दांव पर रखने का उसका अधिकार है, उनको तो अधिकार नहीं, किंतु ये सब किस लिए किया, जानबूझ करके किया, उनको ऐसे बुलाने से आएंगे नहीं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे, इसलिए ऐसे उपाय रख करके उनको बुलाया, इनको समझेगा कौन, पांडव लोग जुआ खेलते थे, पांडव लोग स्त्री को हार गए, पांडव लोग धन के लिए लड़े, ऐसा नहीं, इसलिए वही जो अपराकृत जो रति है उसके प्रति किसी को यदि लोभ है तो गोपियों का जैसा चरित्र होगा, सीतामा सुबल के समान होगा, नंद बाबा जसोदा जैसा प्रेम होगा, अपने लिए कभी चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं, अभी हम भजन करते हैं पाठ कर रहा हूं मैं सोची ऐसा पाठ करूंगा सब लोगों का मन मुग्ध कर दूंगा और सब लोग कहेंगे वाह 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 अद्भुत पाठक है, तो ये पाठ करने का फल किस पर आया, हमारे ऊपर, कृष्ण के लिए लोगों का चित्त कृष्ण की तरफ में मैं नहीं ले जा सका, किस पर लाया, ये अपराध एक तरफ से है, इसलिए ये सब चीजों को छोड़ना चाहिए। कीर्तन कर रहा वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कीर्तन, ऐसा कीर्तन तो हमने जीवन में सुना ही नहीं, और उसको अपना हृदय दे दिया किसी ने, फिर क्या होगा? बहुत लोगों कीर्तनिया लोगों को भी ऐसा देखा है, वो बंबई में स्कूल में भर्ती हैं, उन्होंने एक लड़की दे दिया, उसके साथ में शादी कर लिया, हर वर्ष हो सिर पर हाथ रख दिया ऐसे, और फिर एक एक रोटी के लिए भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो यही प्रेम का, भक्ति का और ये कीर्तन का फल है ना, भगवान के प्रति प्रेम। अविद्याविमुख अविद्याग्रस्त हरिमुख जीव अपराकृत कीड़ा परिहार करके, छोड़ करके अक्षत ज्ञानी जड़ भोगों में उन्मत्त हो जाता है। वो तो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाता, बस अपने आप उसमें रम जाता है। जितना पैसा अब आएगा अपने भोग में लगाने लगता है, भगवान के लिए, गुरु वैष्णव के लिए नहीं। अब देखो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भजन किया, सनातन गोस्वामी के पास में आया ना, वो क्या स्पर्श मणि फूल में फेंक दिया, याद नहीं। यदि वो चीज चाहते हो तो फेंको इस मणि को, मणि को फेंकवा दिया और कान में कृष्ण नाम किया, कृष्ण के प्रति रुचि हो। और नहीं तो कहेंगे जिसे हमने 40 वर्ष तक भजन किया, मठ में सब किया और सब बेकार गया। अभी मुझको अभी एक चिट्ठी अभी प्राप्त हुई एटा से, किसी ने लिखा है, मठ में तो वही सांसारिक बातें हैं, बहुत दिन हमने सेवा की, देखा सुना, वहां पर भजन किया, तिलक माला भी लिया, किंतु देखा कि वहीं पर जैसा हम संसार में है उससे भी अधिक वहां पर भी माया, वहां पर भी हमारे घर ही जैसा सभी को, तो उसे अच्छा है कि हम अपने घर में रह करके क्यों नहीं भजन करें, क्योंकि वही चित्त लेकर के यहां आए, वही देखा, ये सब चीजें उनको दिखाई नहीं पड़ी। अपराकृत विभिन्न जो लिखा है भवेत, मैंने जरूर करना चाहिए, नहीं तो प्रत्यवाय होगा, दोष होगा। कोई रुचि लब्ध, रुचि के द्वारा प्राप्त जो राधानुगा भजन पथ है, इसके लिए कहते कोई अधिकार की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सुनने से ही हो जाएगा वो लीला कथा अरास इत्यादि, बिना अधिकार के नहीं। रुचि हो तो, रुचि होने से श्रद्धा उसमें प्रतिष्ठा है, उस श्रद्धा के अनुसार में यदि कोई सुने तब तो ठीक है, अब नहीं तो मत सुने, सभी लोग सुनेंगे ऐसा नहीं, यदि सुनेंगे तो जो बुरी बातों में अनर्थ में उनका अनर्थ बढ़ जाएगा, शेख जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए, अनमूल शाखा तब भैया बढ़ी दे न पाए। यदि अनर्थ रहेगा उन कथाओं को सुनेंगे तो क्या होगा, वैसे सूर ताल लय मान और विचारों को ले लेंगे ऊपर करी, और समाज में ही प्रचार करें, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, और यह लाभ पूजा प्रतिष्ठा बढ़कर के अंत में हमको डुबा देगी, भक्ति नहीं होगी, भक्ति स्थगित रह जाएगी। आ रहा समझ में? यही कथाएं सुनकर के भागवत की जब लोग समाज में कहेंगे वो लोग खूब आदर देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे, सम्मान करेंगे, और स्वर के साथ में ये कथाएं यदि हो मधुर स्वर के साथ में तो और भी, किंतु बढ़ेगा क्या, आत्मसम्मान बढ़ेगा, सांसारिक भावना बढ़ेगी, भोग की लालसा आएगी और न जाने क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं समझ लो, प्रपंच में कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार है, यहां पर साधकों को कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इस पर विचार होना चाहिए। गोलोक वृंदावन में वैसा कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं है, क्यों, वहां पर रुचि प्रधान अनुराग है, जो कुछ होता है अनुराग के द्वारा वो सब चलता है, और इस जगत में अच्छे बुरे का कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका विचार है इसमें गोलोक वृंदावन में। ऐसा विधि नहीं हो सकती, वैकुंठ में कुछ है, गोलोक में भी है, वृंदावन सब अति ये विधि विभावों से और ऐसे सब चीजों से सब था ऊपर में, जो कुछ होता है वो सब प्रेम की तरंगे होती हैं और अप्राकृत प्रेम की तरंगे होती हैं। यदि कोई जीवात्मा यदि कोई अवतार जिक्र करते हैं किंतु इन विचारों को सुन करके यदि कोई व्यक्ति जीवात्माओं की नित्य और अवश्य सेवा इस जगत में जो अवतरण किया है जो उतरी है जो कृष्ण जी ले आए हैं जो परम श्रेष्ठ मधुर भाव है इसके प्रति यदि कोई उदासीन हो कोई साधक तो क्या होगा इसे निश्चय ही भगत से बातें छोड़ करके जैवलम पट्ट में अधिपतित हो जाएगा। दोनों बातें कह रहे हैं एक ही बात करके समाप्त नहीं हो गए इस पर विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये जरूर कर्तव्य है क्या मधुर रस की सेवा के प्रति उदासीन न हो उसके लिए साधन भजन श्रवण कीर्तन होना चाहिए किंतु उस रूप में नहीं शुद्ध रूप में होना चाहिए। रुचि जिसकी है रुचि युक्त आदर के साथ में इन कथाओं का नित्य श्रवण कीर्तन इत्यादि करें किंतु उसे भोग की प्रवृत्ति न बढ़े। इसलिए जो लोग भोग के प्रवृत्ति वाले हैं उनको भागवत पाठ करने के लिए मना किया गया। क्यों भागवत पाठ करने से रुपये पैसे ग्रहण करने की भोग की लिप्सा बढ़ती है। श्रीमद भागवत का एक श्लोक क्या है श्लोक भागवत का यदि कोई अनुशीलन करे और ये सब प्रवृत्तियां नष्ट नहीं हो रही हैं तो उसे क्या होगा जागतिक ये सब चीजें बढ़ जाएगी अहंकार बढ़ जाएगा। कोई इसको त्याग नहीं है इसलिए शुद्ध रूप में भागवत सुनना चाहिए और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब देखते हैं हम देखते हैं कि वृंदावन में मथुरा में जगत में अधिकांश पैसे लेने के लिए व्यवसाय के रूप में भागवत का पाठ करते हैं एक व्यवसाय हो गया है पैसा रोजगार करके ख्याति प्राप्त करके संसारी कामों में उन चीजों को लगाए। भक्ति हमको बढ़े शुद्ध रूप में भक्ति करो हमने तो देखा है ये भागवत का पीएचडी किया बहुत अच्छे वक्त हैं सुंदर सुकांत हैं युवक हैं बड़े सुंदर भी हैं बहुत सुंदर हिंदी भी बोल लेते हैं भागवत के विचारों को भी बोलते हैं किंतु कौन देवी चंडी चंडी जो जर्जर हैं कंकाली देवी की उपासना भागवत पढ़ करके भागवत का आराध्य कंकाली है जब पूछा जाए तो कहेंगे ये जोगमाया है उन्हीं इसलिए इनकी कर तो जोगमा के पति कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करता या जिनकी छाया ये है वो श्रीमती राधिका कृष्ण की आराधना क्यों नहीं करता वो नहीं करेंगे। मधुर रस इसमें इस पर देखो और विचार करो मधुर रस रति में तत्पर नहीं होने से जीव का मधुर रति के विपरीत जड़ भोग बात प्रबल होगा यदि इसमें नहीं होगा तो यदि इसके प्रति रुचि नहीं हुई भगवान ने इसको इसीलिए प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं स्त्री का नाम नहीं सुनते उनके सामने काठ की मूर्ति भी स्त्री की नहीं आती यदि छू दिया किसी स्त्री को तो समुद्र में कूद जाते हैं मरने के लिए। कोई एक लड़की गीत गोविंद का पदगार है और महाप्रभु के कानों में गया और वो उन्मत्त हो गए दौड़े बड़े जोर से उनकी चादर गिर गई कपड़े कांटों में उलझ गए फट गए शरीर में भी कांटे लग गए और इतने वेग से दौड़ रहे हैं जो गोविंद उनको पकड़ नहीं सके। जब एकदम वो लड़की सामने आ गई अब पकड़ छुनाई चाहते हैं छुना किस लिए आज तुमने हमको हमारे कानों में कैसा अमृत डाल दिया आज हमारा जीवन तुमने कर दिया मैं तुम्हें क्या दूं, ये कहने के लिए एकदम अच्छी ने तक गोविंद ने दौड़ करके वहीं से जोर से चिल्ला, अरे वो लड़की है, दस बार चिल्लाया तो उनके कान में पड़ा लड़की सब दस। इधर से गोविंद तूने आज मेरे प्राण की रक्षा, मैं समुद्र में कूद जा, किंतु ये महाप्रभु जी क्या चिंतन करके इतने उतावले हो रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं राधा कृष्ण की, गोपियों की, नंद यशोदा का कृष्ण के साथ में व्यवहार, ये सब प्रेममयी अनुरागमयी चीजों का लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा सा विक्षेप न पड़ जाए, सुखदेव गोस्वामी को देखिए, उनको भानी नहीं है कि स्त्री बैठी है कि लकड़ी है कि क्या है, कोई भानी नहीं। ये रूप गोस्वामी को, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा विशेष कैसे उदासीन रहकर के दिन रात उसमें लौट। हाँ एक बात देखना, हम नकल नहीं करेंगे, अपने अधिकारानुसार में धीरे धीरे चलेंगे, वैसे ही भजन करने की चेष्टा। और नकल करके हम वही सुखदेव गोस्वामी सनातन गोस्वामी हो गए और फिर तो ये सब हो गए। इसलिए अपने अधिकार के अनुरूप में चल करके साधन भजन करते हुए इन चीजों को समझ करके भजन करना पड़ता। इस प्रकार से वात्सल्य रस की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी अपनी भोग की कामना न हो, कृष्ण को छोटा सा बच्चा समझ करके, हे कृष्ण हमको ये धन दे दो, हमारा ये दे दो, संसारिक चीजें उसको, तो वात्सल्य रस नहीं बल्कि वो भोग रस है। इस प्रकार से कृष्ण को एकमात्र प्रापित बंधुवत सदबंधु की भांति, ये भी कह रहे हैं लौकिक सदबंधु की भांति नहीं करने से जीवों का कल्याण नहीं है। लौकिक बंधु हमें नीचे में ढकेलेंगे, राजा मेरे प्रीति करे हे मोर बंधु, इसकी मुझे बड़ी प्यारी है, हमारे लिए प्राण दे देती है, यही मोर बंधन। संसार के लोग हमें प्रीति करते हैं किस लिए, और वही चीज थोड़ी सी जिसके लिए प्रीति करते हैं वो थोड़ा सा ना हो। एक अभी हमारी क्रिकेट की टीम लंका में गई ना, और वहां से कोई शील्ड ले आई, लाइन कतार लग गई लोगों का देखने के लिए, और पुष्प वर्षा माला उनके गले में न आए, और वही जब पाकिस्तान गई हार करके आई तो जूते का माला डाल दिया। कैसा एक मिनट में यही जगत की रीति है। इसलिए कृष्ण को लौकिक संत बंधुवत जान करके प्रति जगत को देने के लिए, लोग देने के लिए भगवान की यह सब लीला, महाप्रभु की लीला को और कृष्ण की लीला, ये इसमें सार चीजें हैं। ये यदि आ गई तो खूब पढ़ो लिखो भजन करो ऐसे, और इन लोगों का सुनो, और नहीं तो सावधान सावधान से, नहीं तो सेवा भी छूट जाएगा। मूल चीज यही है, ये गौण चीज है, सेवा गौण चीज है, नहीं अभी सेवा ही मुख्य है, भजन अभी गौण है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव की कथा सुनना, अर्चन, रसोई अभी हम लोगों के लिए यही मुख्य चीज है, ये समझो। और आएगा तब इसके प्रभाव से उनके प्रति थोड़ा सा आदर आएगा, श्रद्धा आएगी, लोभ आएगा, उस समय में विचार होगा, जो जो जिस अवस्था में है उसके अनुसार में कर्तव्य कर्तव्य का यहां पर विचार है। अभी ऐसा मत सोचो कि हम केवल हरिनाम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है मत करो, भोजन भी मत करो और सेव भी मत करो, कोई हर्ज नहीं, करो तो ऐसा, तो वो तो उपदेश पूरा लेंगे नहीं। इसलिए अर्ध कुकुटी न्याय वो सब ग्रहण, इसलिए अभी वैष्णव की सेवा को प्रधान समझो, वैष्णव सेवा छड़िया निस्तार पीछे करे, इसको भी विचार रखो, दिन रात सेवा करो, सेवा से सुकृति होगी, सुकृति से हृदय में श्रद्धा आएगी, श्रद्धा ही बीज है भक्ति लता का, ये कम शपथ का जाए और इसका विपरीत करेंगे सब शपथ हो जाए। इसलिए भगवान की सेवा को यहाँ पर कोई भी चीज को इसमें ये छोटा है ये बड़ा है ये गौण है ये मुख्य अभी मत विचार करो, वो अपने आप कृष्ण के भजन में तन्मयता आएगी अपने आप वो ऐसा होना चाहिए। इसलिए कृष्ण सेवा के प्रति उदासीन मत हो, ये भजन का फल नहीं है, कृष्ण की सेवा में उदासीन हो जाए। इस प्रकार से भगवत गुणता उपस्थित होने पर जीव समझता है कि हमें भजन में प्रवीण हो गया, इसलिए सब वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा गुरु की सेवा अब कोई जरूरत नहीं, ऊपर पहुंच गया सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं, फेंक दो। इसलिए कहते हैं कृष्ण सेवा के प्रति उदासीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। भोग पर इंद्रिय शरीर नश्वर देह वृत्त वृत्ति करते 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 स्वरूप ये विभ्रांत, ऐसे लोग विभ्रांत होकर के स्वरूप से चित हो, एक तो स्वरूप आए नहीं भक्ति से भी चित हो जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण में निरपेक्ष बुद्धि नहीं होने से जीव कृष्ण के विमुख होकर के क्रमशः संसार में रसातल में मिलता जाएगा। और इन विचारों को लेकर के ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करके क्रमशः भगवान के भजन में तत्पर हो तो फिर उसकी आत्मा निर्मल होगी और तब फिर वो भव्य क्रिया की सार्थकता है। आज ही तक मंशा गल्प कृपा सिंधु
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
आश्य प्रसादमभूत जनस्य कृत्वा गन्धर्वगणे गणनां विधेहि अंगश्यामलिन छटाभिरभूत मन्देक कौन्दिलवरं जद्दं जागृतरोचि संवदत कणपट्टं वरस्य बृंदारंगवासिनम हृदय सत्तामाभिरामोदन राधा स्कंदनीशितोज्वल ध्यान भक्तिहीनापराधल चित्ताश कामुशरण प्रपन्ना मस्ते चरणा गुरवे गौरचंदाय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो यन्त्रव्रजन्तमनुपेतमपेतपित्तं द्वैताय नो गुरः कातरय गुहाव पुत्रेऽपि तन्मे तया करवो तं सर्वभूतहृदयम् कलैवास्मि न जीवामि कयामि इति विज्ञाय राधे तं मां।
आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद आज श्रोताओं में बहुत से भाषा के जानने वाले लोग, आसाम भाषा के बोलने वाले, आसामी भाषा ये लोग, और इसमें कोई बंगला भाषी है और कोई हिंदी जानने वाले भी, बहुत से भाषाओं को जानने वाले। यदि केवल हिंदी में बोलता हूं तो बंगाली वाले या आसामी वाले नहीं समझ सके, और यदि मैं बंगला में बोलूं तो हिंदी वालों को समझ नहीं है, कुछ असुविधा
नहीं।
अपनारा जरा यात्री ही सारे एखने इसे हमने कल बतलाया था कि कृष्ण की समस्त लीलाओं में चार प्रकार की लीलाओं का समावेश है।
काश्य भाव से, सखर भाव से, बासल्य भाव से और मधुर रस, इसलिए कि उस निदा को गोलोक ब्रज से उतारा, यहां पर निदा करेंगे तो लोगों को लोभ होगा इसको देखकर, इसलिए इस कथा को सुनकर के निदा को औपचारिक होने से भागवत इत्यादि ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है उसको सुन करके पाने का लोभ हृदय में होगा, अतः वो शुद्धा भक्ति में प्रवेश करेगा। शुद्धा भक्ति मानी हो चाहे राग के अनुगत होकर के राग से प्रेम से जो भगवान का भजन किया जाए तो इसमें वो प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि वो जो लीला लेकर के आते हैं उस समस्त लीलाओं में मधुर रस सबसे श्रेष्ठ बतला गया, गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ, उसको जान समझ करके ये क्या चीज है, वैष्णवों के मुख से भागवत सुने या ग्रंथ सुने और उसके अनुसरण करें तो सबसे श्रेष्ठ उनका जो भाव है, कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो गोपियां हैं। उस गोपियों के प्रेम को जगत में दिखलाने के लिए उस लीला के साथ में वृंदावन के 84 कोष में अवतरण किया। ब्रज के अतिरिक्त यह लीला कहीं भी विश्व में या कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर भी वैकुंठ इत्यादि में ये लीला का प्रचार नहीं, गोलोक तक में नहीं है, गोलोक के अंतिम प्रकोष्ठ अंतरतम प्रकोष्ठ ब्रज में ये लीलाएं हैं। वह लीला स्वकीया और परकीया से दो प्रकार की है। स्वकीया लीला किसको कहते हैं, स्वकीया और परकीया, पतित धर्म का पालन करते परस्पर एक से संबंध में होते हैं तब इसको कहते हैं स्वकीया, किंतु वो कृष्ण के साथ में होता है। जगत में हमने कर दिया विवाह हुआ वो हमारी स्वकीया नायिका है ऐसा नहीं होगा, वो तो कृष्ण के लिए ही और उनके लिए है, उनकी जो प्रेयसियां हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखिए जिसका की याद किसको कहते हैं। एक राजा थे, उनकी परम सुंदरी कन्या है, उसका नाम रुक्मिणी है। तो कौन से राजा की लड़की, भीष्मक नंदिनी, कौन से देश के, विदर्भ के राजा भीष्मक की लड़की थी। उस समय में अपने समय में सबसे सौभाग्यवती गुणवती रूपवती वो लड़की थी। नारद जी से कभी उसकी भेंट हो गई कन्या की, जब वो विवाह के यज्ञ होने जा रही है भेंट हो गई, नारद जी ने कृष्ण का रूप का वर्णन किया, उनके गुण का वर्णन किया और सुनकर के मन ही मन में उसने संकल्प कर लिया जो मैं शादी करूंगी तो कृष्ण के साथ में और किसी के साथ नहीं। उसके पिताजी माताजी और घर के लोग चाहते थे कि कृष्ण के साथ में शादी हो, किंतु उसका भाई बड़ा पापवान था, उसने कहा नहीं होगी शादी, रुकने की शादी हम शिशुपाल से करेंगे, शिशुपाल सुंदर योग्य वर। विवाह से दो दिन एक दिन आगे सब तैयारी हो गई विवाह की और शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच गया। उसके बारातियों में जरासंध, दुर्योधन, कर्ण, ये कौरव लोग सब भी और लोग सब बड़े बड़े कंस का प्रतिनिधि भी साथ गया होगा। लड़की ने संकल्प कर लिया, लड़की की शादी हो गई, संकल्प ही पहले भारत संस्कृति के अनुसार में शादी हो गई। ताकि अब
कृष्ण सिंह के अतिरिक्त किसी और गीदर से मेरी शादी नहीं होगी, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और एक ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण रातों रात में पहुंचा, कृष्ण सभा में बैठे हुए थे और उनको यह पत्र चुपके से दिया। कृष्ण ने पढ़ा और पढ़ करके वहां से सभा से निकल आए, कल ही पहुंचना है, रात है यार, कल ही विवाह होने को है। बस साथ साथ में कृष्ण निकले बलदेव जी को, अब आप लग गया वो सारी सेनाओं को लेकर के उनके पीछे पीछे कुंदन नगर के लिए चलते। जब पहुंचे लोगों को पता लगा, उसके पिताजी ने देखा जैसे बर्मे यात्री के रूप में आया है, इसके लिए भी ठहरने का स्थान दो। आगे के साथ में उसको भी स्थान दिया, किंतु उल्लू के काम खड़े हो गए, कहीं उत्पात न कर डाले, इसलिए सारी सेनाओं के साथ में घेराबंदी करके रख दी। रुक्मिणी ने कहा उनके घर का सारी रीति रिवाज थी, लड़की विवाह से पहले शाम को देवी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर ही जाएगी। लाखों सैनिकों की घेराबंदी ने रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में सजा करके वहां पर पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा। और इतने में कृष्ण कैसे रथ को बीच में पहुंचा दिया और पूजा करके जल्दी निकल रही थी, इशारा किया वो अपने आप हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने भी हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने हाथ पकड़ करके रथ में बैठा दिया और घोड़ों की बागडोर इसको सौंप दिया और अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। भीषण रूप से युद्ध हुआ और रुक्मिणी बड़ी कड़ा कौशल से रथ को चलाने लगा। लोगों ने देखा गजा, ये देखो तो ये दुल्हन रथ चला रही है। इसके बाद में बलदेव जी आए, भीषण युद्ध हुआ, सबको हरा करके द्वारकापुरी में रुक्मिणी को ले गए। विवाह शादी बड़े घटा के साथ में हुई, बड़े उत्सव हुए। उत्सव होने के बाद में विवाह हो गया, सब ठीक ठाक होना। कुछ दिन के बाद में कृष्ण रुक्मिणी के घर में बैठे हैं और उसी समय में रुक्मिणी जी ने सोने का दंड वाला चमर अपने हाथों में लेकर के कृष्ण को विजयन करने लगी और दासियों को वहां से हटा दिया, स्वयं सेवा कर रहे हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न है, वो भी प्रसन्न है। इतने में कृष्ण हठात गंभीर हो गए और बोले, ओ मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा भारी अन्याय मैंने किया, मैं तुम्हारे योग्य पात्र वर नहीं था, तुमने अनजान में हमसे शादी कर ली और हमने भी शत्रु पक्ष के मान को मर्दन करने के लिए तेरे साथ में शादी की, नहीं तो मैं तुम्हारे योग्य नहीं था, केवल तुम्हारा उनका मान मर्दन करने के इसलिए मैंने ऐसे की। तू राजकुमारी, मैं साधारण एक व्यक्ति, तुम इतनी सुंदरी विश्व में, मैं साक्षी के तरह काला कलूठा, तुम गुणों से भरी हुई हो, गुण सागर हो और मैं निर्गुण हूं, हमारे अंदर में कोई गुण नहीं, इसलिए जोड़ी ठीक नहीं बैठी। मालूम होता है जो तुमको मैंने कष्ट दिया, इसलिए तुम्हारी जिसको चाहती हो तुम, मैं खुद ही तुमसे प्रार्थना न विनय करता हूं, उसके साथ पास में पहुंचा दूं और वो तुम्हारे साथ में रहे। सुनते ही एकदम कांप गई, जैसे लता कोई कांप जाती है, कांप गई और हाथ से वो चमर का दंड गिर पड़ा और कटे हुए केले की भांति वो जमीन पर गिर। पहले कुछ आंसू देखाए, इसके बाद में आंसू भी सूख गया, बस मूर्छित। कृष्ण ने देखा जैसे ये अच्छा मजाक मैंने किया, ये तो मर गई थे, उतर करके नीचे आए, नारी देखा तो नारी नहीं, एक
उस रूई का पहा लेकर के देखा जी ये सांस चल रहा है कि नहीं, देखा जी तो ये अभी तक कुछ थोड़ा सा चल रहा है, ये भी बंद होने वाला है। अब उपचार क्या करें, तो जोर से कहना आरंभ किया, अरे मैंने तो तेरे साथ में केवल क्या किया, उपहास किया, मैं नहीं जानता कि ये इतनी तुम कोमल हो रहती हो, भला मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मैंने ये देखा रोज रोज एक साथ में रहने से प्रेम पुराना हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि तुम्हारे साथ में कुछ हंसी दिल लगी कर लें तो तुम रूठ जाएगी और उठ करके मन करेगी और हमको दो चार भली बुरी बातें कहेगी, ये सुनने के लिए मैंने लिया। घर गृहस्थी में तो यही आनंद है, और आनंद क्या है, बच्चों का प्रेम रूपी मधु मधु और पत्नी का स्नेह रूप मधु, अच्छी बड़ी बातें, कभी लड़ाई और कभी प्रेम प्रीति हो जाती है, यही संसार है। तो मैंने इसी के लिए किया। अरे मुझे तो याद है गोपियों को मैं बहुत कुछ ऐसा करता और वो हमको उत्तर में वैसा कर देती और हमको जली कटी सुनाती, धूप छोर छोटता सभी कुछ सुनाती और मैं भी प्रसन्न हो जाता, तो वो भी प्रसन्न हो जाती। तो ये तुम मर गई, ये तो मुझको अनुमान नहीं था, नहीं तो मैं दिल ही नहीं करता, मैं तुम्हारा वही प्रियतम हूं, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आश्वासन जब बार बार देने लगे तो थोड़ा सा उसमें देखा जैसे प्राण का संचार होने लग गया। और फिर धीरे 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 कृष्ण ने उठाया, मुख में पानी दिया और उनको साथ। फिर उसके बदले में जो जो कहा था ने कहा कि आपने ठीक ही कहा, आप निर्गुण हैं, और आपने कहा जो तुमको सभी लोग चाहते हैं हमको कोई नहीं चाहता, कृष्ण को, कृष्ण को कौन चाहता है, जो दीनहीन है कंगाल है सबसे उपेक्षित है वही लोग चाहते हैं, और तुमको बड़े बड़े राजा लोग शिशुपाल जैसे और सब लोग चाहते हैं, तो आपने ठीक ही कहा, आप भगवान हैं, आप निर्गुण संतों के ही आप उपास्य हैं, साधारण आदमी आपको क्या समझेगा, जगत का कोई भी रंग, जगत का कोई भी रंग आप पर नहीं चढ़ेगा, हमारे धर्मशाला में हो रहा है डबा है तो दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए आप निर्गुण हैं। इस प्रकार से कह करके अब उनको कृष्ण से उन्होंने कहा और फिर अपने घर में लग गई। ये है स्वकिया, आप प्रक्रिया का क्या बतलाया, कृष्ण से बिना कारण के या कारण के वो उठ जाती हैं और कृष्ण उनके चरण पकड़ करके मनाते हैं, कृष्ण कभी नहीं कर सकते गोपी में दोनों को मैंने छोड़ दिया, बल्कि गोपियां कहेंगी कि तुम हमको भूल सकते तो हम भी तुमको भूल गई, तुमसे हमारा नाता क्या है, शादी विवाह थोड़े हुआ है, तुम हमको रुपये देकर के हमारे बाप से खरीद लिया है थोड़े, तुम हमको खिलाते पिलाते हो, कपड़े थोड़े देते हो। इस तरह से बातें करती हैं और उसी से कृष्ण प्रसन्न हो जाते, इसलिए कहते हैं स्वकिया और परकिया दो प्रकार से इस रस का संस्थान है। परकिया भावे अति रसर उल्लास, रस का उल्लास आनंद का उच्छ्वास इस परकिया भाव में। सीता जी को रामचंद्र जी ने बिना किसी कारण के छोड़ दिया, त्याग कर दिया। यदि इस जगत में अभी किसी की पत्नी हो परम पतिव्रता और सब विषय में गुणी हो और एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया और चार पांच दिन के बाद में या एक महीने के बाद में वो मिली, तो पति उसको छोड़ देगा, यह अन्याय सरासर है।
विवश होकर के वो गई। तो रामचंद्र जी को ये पता नहीं है जो हमारी पत्नी है सब लक्षणों से युक्त हैं, आई आ रही है लंका से, कौन कौन, अशोक वन से, विभीषण जी लाने गए, लक्ष्मण जी को भी भेज देते तो एक सम्मान की बात हो, लक्ष्मण जी को भी नहीं भेजा, विभीषण जी उनको लाए, विभीषण जी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर कपड़े अलंकारी प्यारी लेकर के गए, ये पहले स्नान करके इसको पहन करके तब चलिए पालकी पर, चलिए पालकी पर ले। उन्होंने कहा ये नहीं, जब तक अपने पति से नहीं मिलूंगी तब तक ये वस्त्र हम नहीं छोड़ेंगे और न अलंकार धारण करेंगे न कुछ करेंगे। ये देखिए पतिव्रता था, जबकि सेनाओं के मध्य में पहुंची रामचंद्र जी ने कहा कि पालकी रोको, सब लोग का काम खाएंगे, क्यों नहीं, इन बंदरों ने भालियों ने उनके लिए प्राण दिया है, इनको देखे तो सही दर्शन इनका करे, बस उनको उतार दिया, मतलब ये नहीं था जो देखे, कुछ मतलब और है, बस उनको रोक दिया, काजे पैदल आए, पैदल लेकर के उनको लोग आए, जब आ गई तो कहा अच्छा हुआ मैंने अपने क्षत्रिय का धर्म निभाया, हमारी पत्नी का अपहरण लंकेश करके ले गया और मैंने उसके वंश के साथ ध्वंस कर दिया, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती और कुल में एक भी नहीं रहा देने के लिए बाकी, ऐसा कर दिया मैंने, अपना प्रतिज्ञा मैंने रखी और उनका मान मर्दन करके अपनी पत्नी को ले आया, किंतु मैं स्त्री के वशीभूत नहीं, स्त्री के लिए मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने युद्ध किया क्षत्रिय के आन के लिए, सम्मान के लिए, इसके लिए अब आपकी जहां इच्छा हो तहां चली जा सकती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, हनुमान जी ने सिर नीचा कर दिया, प्रभु को आज क्या हो गया, आप प्रभु ऐसे जो किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी के पास सुनने वाले नहीं है, हनुमान जी इतने प्यारे हैं, लक्ष्मण जी हैं और सब लोग हैं और सीता जी से प्यारी कौन होगा, उसकी बात नहीं सुन, किसी की बात नहीं, हनुमान जी कुछ नहीं बोले, उनकी पूंछ नीचे हो गई, ऊपर करते हैं ना तो पूंछ नीचे कर दिया और मुख भी नीचा ऐसा कर दिया, उठा नहीं सके, और लक्ष्मण लाला जी एकदम रोष में आ गए, खुद कुछ कर नहीं सकते। सीता जी ने कहा और यदि मुझको पहले ही खबर दे देती तो इतना ये सब करने की क्या जरूरत होती, युद्ध करने की जरूरत नहीं होती, मैं पहले ही आग में भस्म हो जाती और फिर युद्ध की कोई जरूरत नहीं, हमको ले जाने की जरूरत तो पहले पतला देना चाहिए था, बस इतना ही। दूसरे अत्यंत विनम्र होकर के कहा, देखा जैसे अपनी राय कुछ बदले, हनुमान जी के उनके तरफ में, लक्ष्मण जी के तरफ में देख रहे हैं, राम के तरफ में देख रही हैं और राम का करके एकदम गंभीर कठोर हो। अच्छा विचारो सीता जी का दोष क्या है, क्या दोष, किसी ने क्यों नहीं उनको समझाया, क्यों नहीं समझाया, वशिष्ठ जी भी जब दूसरी बात छोड़ दिया ना तो वशिष्ठ भी नहीं समझा सके, कोई भी उनको नहीं समझाया, वो अपनी बात पर पक्के रहते, जो कह दिया ठीक किया बेटे। अच्छा यहां से फिर उनके पिताजी आए और पवन देव आए, अग्नि ने साक्षी दिया सब लोगों ने, नहीं ये सीता जी परम पवित्र हैं, ठीक है ले लिया, लेकर के फिर अग्नि में वो जा रही थी, अग्नि शांत हो गई और अग्नि देव उसमें से निकल करके सीता, ये पतिव्रता का देखो ये कितना बड़ा भारी लक्षण है, पति पर तो भर नहीं उसका रक्षा कराता है, ये सीता जी के चरित्र में देखा। इसके बाद में फिर जब वहां पर गए 11,000 वर्ष तक राज्य किया, वहां से लौट करके उसके अंतिम दिनों में सीता जी को उन्होंने त्याग कर दिया एक धोबी के कहने से, वो अयोध्या के प्रतिनिधियों को बुला लेते, अपने जितने राज्य के मंत्री हैं उनको बुला लेते। अच्छा ठीक है, नहीं हो तो और ग्रामवासियों को भी, अयोध्या के वासियों को बुला लिया जाता। और वशिष्ठ जी हैं और उनके ब्राह्मण ये सब मंत्री थे, सबको बुला करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी, ये ऐसी ऐसी बात हो रही है क्या करनी चाहिए। ये तो प्रजातंत्र है ना, आखिर जो मन में आए वही कर दे, ये प्रजातंत्र कहां होगा। तो उन्होंने हनुमान को लक्ष्मण जी को आदेश दिया सारा जीवन के लिए उनको देश से निकाला, हमारे देश में न रहे, ऐसी कठोरता किया और चला थी चतुराई के साथ में उनको राज्य से बाहर कर। जब वाल्मीकि के आश्रम में के पास में नदी रास्ते से नौका में चढ़ करके जा रहे हैं, पार करके जब वहां पर जा रहे हैं, लक्ष्मण जी बड़े विलाप करने लगे, अब तो इसको कैसे कहूं सीता मैया को, कैसे कहूं कि आपको सदा के लिए जीवन भर के लिए उन्होंने प्रत्याग किया, उनसे कहा रहा नहीं गया, रोने लग गए। सीता जी ने कहा तुम तो बड़े कोमल हृदय के हो, अरे हमारे तो वो पति हैं उनके लिए मैंने ये रो लिया, तुम एक दिन के लिए भी छूट करके इतना रोते हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा आपको जंगल में सैर करने के लिए मुनियों की पत्नियों से मिलने के लिए नहीं भेजा, आप गहने उपहार और कपड़े जो लाई हैं मुनियों की पत्नियों को देने के लिए उन्होंने इसके लिए नहीं भेजा, ये तो उनकी चतुराई थी, आपको जीवन के सब दिनों के लिए आपका प्रत्याग। और ये काका के मूर्छित हो गए, सुनते ही अब वो विलाप करने लगा, वाह हमको उन्होंने सारा जीवन के लिए क्या मेरा दोस्त, ठीक है जैसा क्या उन्होंने ठीक किया इसमें हमको कुछ नहीं कहा। उनके आदेश को सिरोधार्य करके वहां पर बैठ करके विलाप कर रही हैं और उनको छोड़ करके लक्ष्मण जी विलाप करते करते जब शाम को हुई तब वाल्मीकि जी अपने ऋषि अपने आश्रम में जब आए तो किसी के रोने की आवाज आई और वहां पर आए, अरे बड़े कर्मेश्वर से कोई रो रही है। जब वहां आए देखा सीता जी, अरे आप ये प्रकाश क्यों रो रहे हैं, सीता जी को पहचानते हैं, क्यों आप यहां पर। तो उन्होंने कुछ घटना सुनाई संक्षेप में और इसी ने मन में देखा वो पहले तो रामायण लिख चुके हैं उनको तो यही घटना होनी है, ये वो तो जानते हैं, अभी लोग उसको पढ़ाना बाकी है, अभी पैदा होने गर्भवती थी, जब आई थी तो कितने महीने की गर्भवती थी, शत्रुघ्न जी उसको देख करके आए थे रात में और तब फिर ये मथुरा में आए, बीच में उनके आश्रम में गए और जब शायद पुत्र के रूप में होते हुए देखा ना, हाँ पुत्र को होते हुए देखा था लव कुश को, तो वहां पर सीता जी भी मिला रही है, उन्होंने कहा बेटी तू रोती है कि चलो हमारे यहां रहो हम तुमको रखें, राम नहीं रख सके, मैं उनके अधीन नहीं हूं, मैं अभी की शिकार हूं। ब्राह्मण लोग उस समय के बड़े तेजस्वी होते थे और ऋषि लोग वो किसी ने के अधीन नहीं, वो तो प्रभु के अधीन है के। रामचंद्र जी रुष्ट होंगे इसका यदि उनको भान रहता तो रखते और उनके अतिरिक्त और कोई रखने वाला था उनको, किंतु उन्होंने रख लिया, रख करके पालन पोषण पुत्री की भांति करने लगे। किंतु सीता जी ने एक बार भी नहीं कहा जब मैंने भी राम को छोड़ दिया या उन्होंने मेरे साथ में अन्याय किया है, ये है पतिव्रता धर्म और यह है स्वकीय भाव। गोपियों के लिए चलिए देखिए वृंदावन में ठीक इसके विपरीत किसी कारण से कृष्ण और राधा जी और गोपियां सब बैठी हैं, हठात कृष्ण के मन में कुछ कुतूहल आया, उन्होंने कहा चंद्रा चंद्राकांत राधा जी के हमको चंद्रा का आता है बस्तुलप करके मुख फिर लिया और बिगड़ गई, कृष्ण से बोलना छोड़ दिया। थोड़ी देर में कृष्ण ने देखा ये चंद्रदा कहा है, इसलिए रुक करके थोड़ा सा क्या कर रहे चंद्रान ने, आप ऐसे क्यों हो गए? और सख्याती हंसने लगी और राधा जी बड़ी मांग कर रही हूं, से कृष्ण ने बुरा क्या कहा आपको चंद्रान ने कहा, तो बीच में छेद क्यों कर दिया चंद्रान करके क्यों वो रुक गए, चंद्रान ने एक साथ में क्यों नहीं कहा? अब बिगड़ गई कृष्ण से बोले, कृष्ण मनाते मनाते हार गए। गोपियों ने बहुत तरह से समझाया ये चंद्रान ने तो बहुत अच्छी बात है, आप तो चंद्र के समान मुख वाली अत्यंत सुंदरी, चंद्र से भी अत्यंत सुंदरी है, इसमें इनका क्या दोष है? ललिता जी ने कहा ये दोष तो नहीं है किंतु कुछ तो दोष हुआ, वो रुक क्यों गए? तो इसलिए इसकी खामी भरनी पड़ेगी, इसका दंड इनको भोगना पड़ेगा। कृष्ण बोले आचो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं, जो कुछ दंड देंगे हम दंड भोग। बतलाइए कहां यहां प्रेम का भाव और कहां वहां पर स्वकीय का भाव? जो बुद्धिमान होगा वही राम के कृष्ण रूप को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, रसेन उत्कृष्टते, रस और शक्ति का केवल ये भाव। बैठ जाओ, शक्ति के तात्पर्य प्रकाश का तात्पर्य है, द्वितीया का चांद भी वही है जो पूर्णिमा का चांद है, दोनों में कोई उत्तर अंतर नहीं है, किंतु वो पृथ्वी के आर से छाया से ढकी हुई है इसलिए नहीं दिखता है, तो दोनों एक ही है, कृष्ण ही है संपूर्ण रूप में भगवान, किंतु उनका वो भाग कुछ हो जाता। अर्थात ये बाधुत भाव्या नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम वहां पर है, मर्यादा के लिए सब कुछ को पृथ्वी में त्याग कर सकता है, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम के रूप में उन्होंने जगत में लीलाएं की, लीला करने के बाद में तब वो विचार करते हैं मैं गया किंतु मर्यादा में प्रेम को भी मैं भूल गया, प्रेम का आदर नहीं मैंने किया, प्रेम को ठुकराया हमने, अब ऐसा नहीं कर, अब तो ऐसा हमारा कोई जिसमें प्रेम की प्रधानता रहेगी, मर्यादा पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, दौड़ा पीछे रहेगा। इसलिए उन्होंने प्रक्रियावाओं में अपने नित्य परिकरों को लेकर के गोलोक वृंदावन से इस जगत में पधारे। ये 84 कोष की भूमि गोवर्धन, नंदगा बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन, ये जितने देखते हैं ये सब वहां की चीजें यहां की नहीं है, उस समय आने पर ये तदात्म उसमें हो जाता है। तदात्म माने क्या? जैसे लोहे में आग प्रवेश कर जाती है वो यहां की भूमि में प्रवेश कर जाती है, उस समय में बहुत सुहावना वृंदावन हो जाता है। आज जमुना में पानी गंदा कचरा, आत्मन लेने में भी बड़े बड़े कीड़े मिलेंगे, अभी बरसात है नहीं मालूम हो रहा है, गर्मी के दिन में सूख जाएगी जमुना, सुंदर उपवन उसमें रहते हैं, सुंदर कोयल कुहकती है, मोर नाचते हैं, वहां भौंरे झंकार करते हैं पुष्प पर, कहां ये सब चीज, वहां के लोग परम सुंदर गोप गोपियां और सब कहां अभी देखे, अभी जाएंगे तो मन खराब हो जाएगा, मथुरा वृंदावन में पंडे लोग लूटने की चेष्टा करेंगे और बहुत से सज्जन हैं कुछ सहायता भी करेंगे, ऐसे भी है सज्जन भी है, दुकानदारों के साथ में कोई यदि लग गया ना पंडे, आप दुकान पर जाइए पंडा नहीं बोलता तो भी आपका वो कुछ कंसेशन होता है ना, क्या
कमीशन,
वो आपको वो ले लेगा, आप बात 1 रुपए की चीज लेंगे वो पंडा ले लेगा 8 आना की 12 आना 4 आना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सब वृंदावन वही है किंतु अभी हम लोग माया के ऊपर वे खड़े हैं, कृष्ण की लीला आज भी चल रही है किंतु हम इसकी उपलब्धि नहीं करते, किंतु हां सौभाग्यवान लोग वैष्णव के अनुगत में भजन करने पर इन चीजों की उपलब्धि कर सकते, इसलिए परम सौभाग्यवान व्यक्ति है सब कुछ छोड़ करके निष्किंचन दीन ही बनकर इन चीजों को पाने के लिए चेष्टा है। इसके प्रति लोभ हो, इसीलिए चैतन्य चैतन्य में भी इस कथन का वर्णन किया गया। केवल मात्र ब्रज में है और कहीं नहीं है ये भाव, यहां तक बैकुंठ और द्वारका तक में भी, मथुरा तक में ये भाव नहीं है, कुछ कुछ आभास है। जैसे कि इन महिषियों में महाभाव का कुछ आभास है, प्रेम वैचित्य उनमें पाया जाता है। प्रेम वैचित्य क्या है? ये सब साधन भजन नहीं करने से, नहीं सुनने से समझ में नहीं आएगा कि प्रेम वैचित्य क्या है। इसलिए वैसे साधन भजन करने की, दिन रात परिश्रम करने की जरूरत है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दिन भर बैठे नहीं रहते थे, सोते नहीं थे, क्या करते थे? आप दो मिनट बैठिए तो एक जगह नहीं बैठ सकते, वो तो कुछ रसीली कथा हो रही है इसलिए आज यहां पर सब लोग उद्गृह होकर के सुन करके बैठे हैं। नहीं तो पांच मिनट क्या, दो मिनट भी बैठना बड़ा भारी मुश्किल है, मन को एकाग्र करना भी बड़ा मुश्किल। अभी देखिए तो बिना परिश्रम के मन एकाग्र हो गया है कि नहीं? जिनके लीला कथाओं में इतनी शक्ति है, वो सब उनकी लीलाएं यदि हो रही वो उसमें कितनी शक्ति होगी। ब्रज बटु बने यही भाव निरवधि, तारमध्य आधार भाव भावेर अवधि। ये जो बतलाया केवल ब्रजवधुओं में ही और किसी में नहीं, गोपियां तो बहुत हैं, कन्याका हैं, माताएं हैं और सब लोग हैं, नहीं माताएं हैं, दासियां हैं और कितनी तरह की हैं सब, किंतु ब्रजवधुएं हैं। और उसमें भी राधा के प्रति एकांतिक अनुराग जिसका है, उन्हीं लोगों में ये भाव पाया जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण के लिए विवाह की भी अपेक्षा नहीं रहती, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता। लोग मर्यादा, पति पति सब कुछ को छोड़ करके, पुत्रों का स्नेह छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की मिलने की तीव्र उत्कंठा से मुझे यह ब्रजवधुओं के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा। और उसमें भी राधा भाव की अवधि है, ये गोपियां क्या है? लाग्नि जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की लाग्नि जो वृत्ति है, उसके ये स्वरूप हैं सब। नहीं समझ में आ जा करने से हम लाग्नि किसको कहते हैं, स्वरूप शक्ति किसको कहते हैं, निरंतर वैष्णवों के मुख से सुनने से कुछ आभास आए, कभी भजन नहीं करने से और केवल सुनने से भी नहीं होगा। वैसा भजन करे, मान अपमान क्रोध और संसार के जितने भी कामनाएं हैं सबको छोड़ करके, स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ की भी कामना छोड़ करके, केवल मात्र कृष्ण के प्रति अनुराग हो तो ऐसा हो। इसलिए इसका साधन भी ऐसे ही है, अन्नाभिलाषिता सुंदम ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलक भक्ति उत्तम श्रीमती। तो ये गोपियां क्या हैं? लक्ष्मी जी की भी लक्ष्मी है, जस क्या वो निज रूप तया कला आनंद चिन्हमय रस प्रतिभाविता भी एवं निज रूप तया कला। कृष्ण का रूप कैसा है? सच्चिदानंद में, उनकी कला माने शक्ति, उनकी ये निजस्व शक्ति है। निज रूप तया अपने रूप के समान, कृष्ण का रूप कैसे? सच्चिदानंद है। ये गोपियों का रूप क्या है? सच्चिदानंद में है। और कृष्ण की शक्ति में भी, स्वरूप शक्ति में भी लादनी शक्ति, इन लोगों के साथ में गोलोक में नित्य विलास करते हैं। इसे गोपियां साधारण नहीं, इसके साथ उनमें भी राधा जी का भाव उनमें अवधि तक है, सीमा तक है। सभी गोपियां कृष्ण को आनंद देती हैं और कृष्ण उनको आनंदित करते हैं, किंतु गोपियां में जितने भी भाव हैं सबको मिला करके एक श्रीमती राधिका नहीं, वो सब भाव नहीं। इसलिए राधिका के द्वारा उन सब भावों को कृष्ण प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण माधुर्य रस अस्वाद कारण, जिसमें ऐसा ही अनुराग हो सर्वशक्ति की द्राघनी वृत्ति यदि किसी के हृदय में संचार करे, कैसे करेगी? उनके परिकरों के द्वारा यदि प्रवेश करे, कौन सा सर्वशक्ति की वृत्ति हो, वो भी लाग्नि सार और संबित का, यदि वो हमारे हृदय में संचरित हो तो प्रभु देखते हैं कि वही प्रेम जो गोपियों में है वो इधर आया है, तो उसको लेकर के आस्वादन करके पीते हैं और उसको भी आनंद देंगे, अपने भी आनंद। जब तक यह भाव नहीं आएगा, जिसको कहते हैं प्रौढ़ भाव, निर्मल भाव, तब तक कृष्ण को कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। और यह प्रौढ़ भाव राधा जी में अपनी सीमा तक है, जो और किसी में नहीं है। यही यदि उसका कोई फ्रैक्शन भी हो, उसका आभास भी हो, तो माधुर्य कृष्ण का जो माधुर्य है आस्वादन कर सकता, भी हमारे अंदर नहीं, इसलिए नहीं कर सकता। महाप्रभु जहां कृष्ण नाम किया राधा भाव लेकर, बस मूर्छित हो जाते, हा कृष्ण करो। हम लोग को होता है नहीं, क्यों? अभी साधन उतना नहीं है जैसे कि वो भाव आ जाए। कृष्ण को आस्वादन करने के लिए माधुर्य प्रेम होना चाहिए, प्रेम तो है नहीं, इसलिए न तो कृष्ण ही हमारे पास आएंगे, न हम उनका आस्वादन कर सकें। इसलिए प्रेम के माधुर्य आस्वादन का कारण क्या है? वह प्रौढ़ निर्मल भाव जो गोपियों के हृदय में है, वो यदि जीवों के हृदय में भी संचरित हो जाए, इसलिए उसको संचार करने के लिए अपने को योग्य बनाना पड़ेगा। अतय से ही भाव अंगीकार करें, इसलिए राधा जी का भाव अंगीकार करके साधिले नंदी जवान छा गौरांग, उन्होंने अपने मनोकामनाओं की साधना मैंने प्राप्त किया, आस्वादन किया। इसीलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी ने स्तवमाला में उन्होंने कहा, सुरेशानं दुर्गम गति यत चैन उपनिषदं मुनिनं सर्वस्वं प्रसन्न पतलीनं मधुरिमा दिव्यस प्रेम निखिल पशुपालं मुजदृशा सचैतन्य किं मे पुनरपि दृशो यास्यति पदम्। सुरेशानं दुर्गम अतिशयेन गति अतिशयेन उपनिषद, सुरेशानं दुर्गम, दुर्गम माने बलदेव विद्याभूषण के टीका में बताया दुर्ग, दुर्ग माने जिसमें
दमन करना,
जिसमें छिप करके शत्रुओं से रक्षा की जाती है और शत्रु उसका बाल भी डांका नहीं कर सकता, इसलिए सुरक्षित स्थान का नाम चतन महापुर के चरण कमल। सुरेशानाम, सुरेशान माने ब्रह्मा और शंकर, ये सब देवर्षि देवों में ऋषि जो है नारद, इन लोगों के शरण के स्थान। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सर्व सहज रूप में लिखा, तो भी जरूर पढ़े होंगे, किंतु उस अर्थ को नहीं लेकर के उन्होंने किया सुरेशानाम दुर्गम। ये जो प्रेम है जिसको वो लेकर के आए हैं महाप्रभु जी, महाभाव की अंत मादन मोदन दशा को लेकर के आए हैं, सुरेशानाम उनके लिए दुर्गम है, इनके लिए पाना और चिंतन करना भी दुर्गम है, स्पर्श करना भी दुर्गम है। ये दुर्ग का अर्थ है क्योंकि और शब्दों से इसका सामंजस्य करना है। गति अतिशयेन उपनिषदान, उपनिषदों के लिए कुछ कुछ गति स्वरूप है, अर्थात उपनिषद लोग कुछ कुछ जान सकते हैं, कौन गोपाल कापनि इत्यादि, सब नहीं, इनके लिए तो दुर्गम एकदम है ही संभव नहीं, और उपनिषदों में कुछ के लिए ये थोड़ा सा गति उनकी होगी, उसमें गति होना मैंने क्या उसको जानना। मुनि नाम सारा वस्तम,
मुनि नाग प्रकृति जैसे मुनि लोग हैं उनके लिए ये सर्वस्व है। अब प्रणत पतनी नाम मधुरना जो कृष्ण के चरणों में अंगत हैं ऐसे शरणागत जो भक्त हैं वो उनके लिए मधुर को देने वाला मधुर भाव को देने वाला है। और दिन जाकर प्रेमो निखिल पशुपाल अम्बुज दिशा निखिल पशुपाला अम्बुजा अम्बुज दिशा पशुपाल एक होता पशुपाल मैंने नंद महाराज इत्यादि या कृष्ण श्रीदाम सुदाम पशुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्ज्वल इत्यादि ये पशुपाल है। और पशुपाला कौन है गायों को दुहने वाली गायों को पालन करने वाली कौन है ये इसलिए गोपियों के अंबुज दिशान दिशान माने नयन हैं नयनों के क्या है दिन जासर प्रिम्र उनके आंखों में जो प्रेम बसा हुआ है प्रेम की जो माधुरी है जिसे कृष्ण को भी हर चित्त को हरण कर देती है उसका भी रस का निर्यास है ये कौन महाप्रभु जी के भाव को बतला रहे आगे बतलाएंगे सचैतन्य वो जो चैतन्य महाप्रभु कैसे गोपियों का रस निर्यास कैसे हुआ महाभाव रसराज महाभाव कृष्ण में रसराज और गोपियों का भाव हुआ महाभाव उसमें भी मादन मोदन दोनों को एक साथ मिला करके हो मिला करके अच्छी तरह से पानी दे करके एक कर दो या गला करके एक करके कपड़े में छान करके निर्जात बना दो। ये निर्जात कौन है स्वयं यही महाप्रभु जी सुरेशा नाम दुर्गम दुर्गम और उपनिषदों के लिए बहुत थोड़ी सी गति में मुनियों के सर्वस्व और प्रणत भक्त जो दास भक्त है उनके लिए मधुर नाम और गोपियों के लिए प्रेम के निर्यास चैतन्य महाप्रभु है वो कब हमारे आंखों के सामने में प्रकटित हो ये किस लिए बतलाया महाप्रभु जी जो आए हैं रस निर्यास करने के लिए उसको हमारे रूप गोस्वामी ने आगे भी चल रहे पंचायत राशन
प्रभजंतमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरहकाव पुत्री तन्मेतया सर्वभूत
कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा अद्भुत है जिसमें कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं ये कहने का तात्पर्य इसे प्रणय नहीं मान कैसा उनका उनके प्रति प्रणय है राधाया प्रणय महिमा कितिशो वा अनया एव अतु राधिका या एव राधिका के द्वारा अन्याय अन्याय अस्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृश और अनया राधिकाया राधिका के द्वारा कृष्ण की जो मधुरियां हैं चार प्रकार की स्पेशल और सब मधुरियां हैं किंतु उसमें से चार माधुरी रूप गुण वेणु ये माधुरी इसके अतिरिक्त प्रेम की माधुरी स्नेह की माधुरी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग विशेष करके महाभाव की माधुरियां ये कैसी हैं कृष्ण की ये मत समझो जो आश्रय में ही केवल ये भाव है कृष्ण में राधा जी में स्नेह है बढ़ रहा है ना या गोपियों में या आश्रयों में जीवों में किंतु साथ साथ में कृष्ण में भी स्नेह है अपने आश्रय के प्रति कृष्ण का भी महाभाव है आश्रय के प्रति और आश्रयों का कृष्ण के प्रति महाभाव है। तो यहां कह रहे हैं कि राधा जी कृष्ण की इन माधुरियों को विलास माधुरियों को इन माधुरियों को जो आस्वादन करती हैं वो कैसा माधुरी जिसलिए कि कृष्ण को भी अपनी माधुरी आस्वादन करने का लोभ हो जाता है ओ मैं राधिका हूं, विदग्ध माधव में जैसा लिखा राधिका ही वो राधिका की भांति अपनी माधुरियों को कैसे आस्वादन, उसमें क्या है और आस्वाद वो जिन्हें मधुरिमा की दृश्वा मदीय सौखन चाश्य मद अनुभवत मत माने हमको अनुभव करके राधा जी को अतः तो हमारी माधुरियों को ग्रहण कर उनको कौन सा सुख प्राप्त होता जिसे एकदम महाभाव की स्थिति में पहुंच जाती है और उसमें अष्ट शक्ति 33 प्रकार के व्यभिचारी अनुभव और सात्विक इत्यादि भाव महाप्रलय मूर्छा तक ये हो जाता जो और किसी में नहीं देखा जाता। इन तीनों माधुरियों को कृष्ण आस्वादन करने के लिए राधा जी का भाव ग्रहण करके सची के गर्भ में पूर्ण चांद की भांति अब राधाया प्रणय महिमा के श्लोक में उनको अब बतला करके अब विशेष रूप से उन्हीं को बतलाने के लिए भूमिका अभी तक किया। ये चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी, इसी की यह व्याख्या करना चाहते हैं। इसी के लिए भूमिका में अभी तक उन्होंने बतलाया कि युग धर्म स्थापन करना महाप्रभु जी का कार्य नहीं, नाम प्रचार करना ये भी उनका युग धर्म है ये भी नहीं, वो अनर्पित चरण चिराग ये जो श्लोक में जिस प्रेम को दान करने के लिए कहा गया है ये हेतु है उनके आने का, किंतु प्रधान हेतु नहीं है क्योंकि उनका असल स्वरूप है वो रसिक शेखर है, इसलिए रसास्वादन का रस लोलुप है ये उनका अपने स्वरूप का कार्य है और स्वरूपानुबंधी गुण का गुण है करुणा है? ये करुणा को देने के लिए क्या चीज, उसी का एक कण देने के लिए, उसी की शोभा संपत्ति देने के लिए, किस चीज का उन्नत उज्जवल रस देने के लिए जो जीव स्वरूप के लिए अधिकार है उस चीज को देने के लिए, वहां का इस चीज को देने के लिए प्रेम वो जगत, बिना प्रेम के कृष्ण के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी और अनुभूति भी नहीं है और रसास्वाद भी नहीं। प्रेम नहीं है, कंस ने उनको देखा, कंस के अंदर में प्रेम नहीं, उसमें विषय प्रेम है, मोह है, अज्ञान है, काम है, इसलिए कृष्ण को देखकर के उसे आनंद नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न पड़ा,